Caribo.
राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जन वल्लभ गिरिवर धारी,
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरि
जय राधा माधव कुंज बिहारी
यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानंदन व्रज जन रंजन
यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन
यमुना तीरवन चारी
यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
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 जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
सभी लोग प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे everybody chant holy
krishna man. krishna hare 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 rama hare rama ram ram hare hare
hare krishna 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 hare 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 rama राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
सभी
बोलिए
राधा दामोदर राधे
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय
प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद
प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद
जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद
जय प्रभुपद 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 शिल
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
श्री राधा दामोदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की शशि गौर निताय की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे श्री गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः निंदन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नीप प्रसुञ्छविं क्रोधवीरकृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्युज्ये वदन्तं नृत्यन्तं द्रुत्रमाशुनिर्जरचये सिञ्चन्तभोर्वीतलम् गायन्तं निजपार्षदे परिवृतम् श्रीगौरचन्द्रं नुमः श्रीगौरचन्द्रं नुमः वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बररुणबिं बफल धरोष्ठा पुरणेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यस्यात् कदापि वसनात् चलखेलनोत धन्याति धन्यपवने न कृतार्थमाने योगी मधुर्गमगति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु विषभा करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि लीलाशुकोसो वृषभानुजाया पवित्रचञ्चो प्रियचुम्बनेन एकान्तिको नं न्यरहस्य पाठि गोलोक प्रसाद सदा निवासी श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताज स्यसतिं स्मृतिं हृदि स स्वलक्षणाप्रा दुर्भो किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता बुरतेर महत भी यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमुषपुरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो रसषोडशात्मक सोलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित जन्माष्टमी के शुभ अवसर में इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह में हार्दिक स्वागत करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हमारे आराध्य भगवान श्री श्री राधा दामोदर जी के चरण कमलों में शत शत नमन करता हूं। तत्पश्चात जगत के नाथ जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। तदंतर कलयुग के अवतार करुणा वरुणालय जो श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर साक्षात कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे महावदान्य अवतार को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत को समझकर श्रीमद् भागवत के ऊपर टीका लिखने वाले अपनी कमेंट्री देने वाले जिनमें से सर्वोच्च जिसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया है ऐसे श्रीपाद श्रीधर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और उसी के साथ अनेक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सब आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और कृपा की भीख मांगता हूं कि जिस प्रकार इन्होंने भागवत को समझा है अपने जीवन में आत्मसात किया है उसी प्रकार हम भी इस भागवत को समझ सके और जीवन में धारण कर सके। तत्पश्चात इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान को न केवल भारत अपितु समग्र विश्व भर में प्रचारित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के फाउंडर आचार्य ऐसी भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से आज इस संसार में नगर नगर गांव गांव गली गली में अनेक भक्त इस भागवत का लाभ ले रहे हैं। तत्पश्चात हमारे दीक्षा गुरु परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनकी कथा श्रवण करके जिनकी कृपा को प्राप्त करके हम आज भागवत के ऊपर कुछ बोलने के लिए बैठे हैं। और उसी के साथ साथ हमारे प्रिय महाराज लोकनाथ महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जिनकी शिक्षा को ग्रहण करके, जिनके अनुगत्य में हम कुछ आज बोलने जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ आप सब श्रोताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रोता तो बहुत सारे होते हैं, परंतु आप जैसे भक्त श्रोता मिल जाना ये बहुत मुश्किल होता है। और भक्तों के बीच में भागवत कथा सुनाना ये जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है। क्योंकि गीता में भी भगवान कहते हैं, भक्तों सीमे सखा चेती, मैं मेरे भक्तों को ही ज्ञान देता हूं। और हे अर्जुन, यह ज्ञान यदि कोई मेरे भक्तों के बीच में बताता है या प्रचार करता है, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशु अभिधास्यति। मद भक्तेशु, मेरे भक्तों के बीच में यदि यह ज्ञान कोई बताता है तो मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। न तस्मात मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतम्, ऐसा भक्त न तो मुझे प्रिय था, न है, न होगा, जो मेरे भक्तों के बीच में बैठकर मेरी कथा सुनाता है। तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है आप सब भक्तों की कृपा से, और विशेष इस मंदिर के अध्यक्ष इष्ट देव प्रभु की कृपा से। हमारे शिक्षा गुरु हैं, और वास्तव में प्रभुपाद जी के कुछ गुण इनमें उतरे हैं। जीवन में जब उत्साह कम हो जाए तो कुछ मत करना, यहां आकर इष्ट देव प्रभु को देख लेना। कभी भी एक जगह पर बैठे नहीं दिखेंगे आप, कभी यहां, कभी यहां, कभी वहां, प्लान प्लान। मन में यही उत्साह है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभुपाद जी की संस्था में आए और भक्ति का लाभ ले। उत्साह के मूर्तिमान स्वरूप है, और वास्तव में हम यहां पर आते हैं हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जाएंगे तो प्रभु जी की कृपा होगी उन्हें देखकर। मैं जब मुंबई जाता हूं तो कई लोग नए मंदिर बनाने के चक्कर में हैं, तो मैं यही कहता हूं, आपको प्रेसिडेंट बनना है तो सोलापुर में 10 दिन रहकर आओ। एक आदर्श प्रेसिडेंट कैसे होते हैं आपको सोलापुर में देखनी है, और मैं देख रहा हूं एक साल में इतनी प्रगति है। पिछले साल आया था तो केवल एक छोटी सी झोंपड़ी थी, और धीरे धीरे करके बहुत अच्छी। वास्तव में प्रभुपाद जी के एक सैनिक है और अपना कर्तव्य जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इनकी कृपा से आज हम कुछ यहाँ पर भगवान की कथा के ऊपर कुछ बोलने जा रहे हैं। हम उनके चिर ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, श्रीमद् भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन भागवत एंड भगवान। भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण ही भागवत के रूप में कन्वर्ट हुए हैं।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
होता है, पहला दिन है ना, इसलिए ये माइक में वास्तव में ऐसी गड़बड़ी होती है। मैं अक्सर कहता हूं माइक और वाइफ में कोई अंतर नहीं होता है। माइक वाइफ, वाइफ माइक, दोनों सिमिलर शब्द है ना। विचार करने जैसी चीज है। अब देखिए, यदि माइक बिगड़ गया तो पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाता है, और यदि वाइफ बिगड़ गई तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। लेकिन माइक कितना भी बोले, माइक को बंद करने की स्विच होती है। आप लोग बुद्धिमान हैं, परंतु वाइफ को बंद करने की स्विच आज तक नहीं बनी। लेकिन कुछ भी बोलो, ये माइक यदि बिगड़ जाए ना तो रिपेयर हो सकता है। कुछ लोग नहीं समझे, कल सुबह तक समझ जाएंगे। खैर ये तो कौतुक की बात है, वास्तव में मातृवन तो एक आदि शक्ति है और स्त्रियों के बारे में ठीक नहीं है। मैं तो ये साधारण वाइफ की बात कर रहा हूं, माताजियों की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो कुछ माताजी रुष्ट हो जाएगी, प्रभु जी तो हमारे पीछे पड़ गए। खैर श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है, उद्धव जी के देखते देखते भगवान भागवत में प्रवेश हो गए और भगवान के जो अंग है वही भागवत के 12 अध्याय है। और यह बात स्कंद पुराण पद्म पुराण में भागवत की अनेक अनेक महिमा गाई गई है, परंतु आप इतना ही समझिए, भागवत भगवान में कोई अंतर नहीं। परंतु प्रायः हमारी बुद्धि ऐसी है, जब दो चीज हमारे पास आ जाती है तब उसमें कंपैरिजन होती है कि भागवत और भगवान, फिर भी ये भागवत और भगवान ये दोनों में से महान कौन है। हालांकि कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, परंतु विचार कीजिए कि भगवान और भागवत में महान क्या है। इसके लिए आप एक छोटी सी कथा जान लीजिए। महाराज परीक्षित के बारे में आप सब लोग जानते हैं। महाराज परीक्षित पांडवों के अंतिम वंशधर थे, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में थे और उस समय अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और 1 ब्रह्मास्त्र उस अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर। अब देखिए, महाराज परीक्षित अपनी मां के गर्भ में है और उस समय उनके जीवन में एक विकट स्थिति आई। महाराज परीक्षित के जीवन में 2 दुर्घटना हुई, एक तो जन्म के समय और एक अंतिम समय। एक दुर्घटना अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और दूसरी दुर्घटना समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा श्राप दे दिया, 7 दिन में मर जाओ। महाराज परीक्षित के जीवन में 2 दुर्घटना और दोनों दुर्घटना में उन्होंने भगवान और भागवत का सहारा लिया। अब देखिए, महाराज परीक्षित जब गर्भ में थे तब उनकी मां उतरा, पता चला कि यह ब्रह्मास्त्र मेरे और आ रहा है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए रथ के ऊपर सवार हो चुके थे। उद्धव जी और सात्यकी जी बस आदेश देना बाकी था, परंतु उसी समय उतरा दौड़ती दौड़ती कृष्ण के पास आई, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते। हे देवाधिदेव, हे जगत के ईश्वर, हे जगतपति, पाही पाही मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या हुआ? भगवान कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हैं, उतरा नीचे खड़ी हैं, क्या हुआ? तब उतरा कहती हैं, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, आप मेरे गर्भ की इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा कीजिए। तो मानो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे माता जी, आप दौड़ती दौड़ती मेरे पास क्यों आ गई? ये आपके 5 दादाजी खड़े हैं, 5 पांडव, और अभी अभी कुरुक्षेत्र की भूमि पर विजय होकर आए हैं, फ्रेश एकदम अनुभवी एक्सपीरियंस वाले हैं, हजारों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार कर ये 5ों पांडव विजय होकर आए हैं, पांडवों की शरण में जाइए, मैं तो बंसी बजाने वाला एक ग्वाला हूं, मेरे पास क्यों आ गई? तब उत्तरा जी बहुत सुंदर बात कहती हैं, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
हे कृष्ण, इस संसार में ये मेरे पांच दादाजी खड़े हैं, यदि मैं पांच पांडवों को कहूं कि एक मिनट में 10,000 लोगों को मारना है, वे मार डालेंगे, परंतु मरे हुए को जीवित करने का काम ये लोग नहीं कर सकते हैं। इस संसार में अनेक लोग हैं जो दूसरों को मार सकते हैं। हम पेपर में पढ़ते हैं, आज आतंकवादियों ने इतने को मार दिया, यहां इतने मर गए, बस में इतने मर गए, ट्रेन में इतने मर गए, परंतु कभी यह सुना कि फलानी जगह पर एक व्यक्ति मर गया था और 2-3 जन ने मिलकर उसे जीवित कर दिया? कभी नहीं। कृष्ण, इस संसार के लोग आपस में एक दूसरे को मार सकते हैं, परंतु मरे हुए को जीवित करने का काम एकमात्र आप ही कर सकते हो, एकमात्र आप ही अभय प्रदान कर सकते हो। यह सत्य बात है। इसलिए गोविंद दास जी कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। अभय प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, जो मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। ये केवल बोलने की बात नहीं है, भगवान के इतिहास में आप देख लीजिए, अनेक अनेक लोगों को कृष्ण ने मरे हुए को जीवित कर दिया। समुद्र मंथन प्रसंग में ये लोग समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को उठा लिए, देवता और असुर मिलकर, और बिचारे उस मंदराचल पर्वत को उठाकर नहीं रख सके, वह पर्वत गिरा और अनेकों लोग उसमें मर गए। चूर्ण या मास राजन, हे राजन, वहां पर चूर्ण हो गए सब लोग, परंतु भगवान श्री कृष्ण आए और अपनी कृपा दृष्टि से सबको जीवित कर दिया, मरे हुए को जीवित। सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़ने गए थे उज्जैन में, 64 दिन में 64 कला। कृष्ण हमारी तरह 10-10 साल, 15-15, 25-25 साल नहीं पढ़े, कृष्ण केवल 24 दिन गुरुकुल में पढ़े, और 64 दिन पढ़े, 64 दिन में सब कुछ सीख लिए। और हम लोग तो एक एक स्टैंडर्ड में 2-2 साल, 3-3 साल, लगभग पूरे गांव के साथ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एक ही स्टैंड में रहता है और दूसरे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु कृष्ण को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाके वेद श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी है। जिसके सांस से 4 वेद प्रकट होते हैं, वो भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत है। अरे भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान का वाहन गरुड़ जी, वे गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो अपने पंख से साम वेद की ध्वनि निकलती है। जिसे हम हमारा मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं तो धुआं छोड़ता है वो मोटरसाइकिल और कार, ऐसे भगवान का वाहन गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंख से साम वेद की ध्वनि, जिसके वाहन से वेदों की ध्वनि निकलती है, उस भगवान के सांस से वेद निकले, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वेद नारायण साक्षात, ये वेद जो है साक्षात नारायण से प्रकट होते हैं, स्वयंभू इति सुश्रुम, स्वयंभू है। परंतु फिर भी भगवान दिखाना चाहते हैं कि यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो संसार के लोग भी नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे कृष्ण तो नहीं पढ़े थे, हम क्यों पढ़े। इसलिए भगवान संसार में आचरण आदर्श दिखाने के लिए पढ़ते हैं। 64 दिन तक पढ़े, 64 कला सीख लिए, और पढ़ने के बाद गुरुजी के पास गए, गुरुजी गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। देखिए ये हमारी वैदिक परंपरा है, हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे इतिहास में स्टूडेंट विद्यार्थी गुरु के पास जाते थे और गुरु उसे पढ़ाते थे, और पढ़ने के बाद विद्यार्थी कहते थे आपको क्या चाहिए। और आज आज के गुरुजी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर बोर्ड पर ही लिखा होता है 1 महीने की 500 रुपया फीस है, यदि हो तो ही आना, नहीं तो मत आना। मुझे याद है हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम पढ़ने में बहुत आलसी थे, इसलिए कॉलेज के जो प्रिंसिपाल थे उन्हीं का ट्यूशन करते थे, और हम लोग फीस टाइम पर नहीं भरते थे, तो एग्जाम का जो समय होता था उस समय फाइल लेकर बैठते थे। कल्पेश मेरा नाम, मेरा कॉलेज का नाम कल्पेश था, कल्पेश आप फेल हो जाओगे, तो हमें कहना पड़ता था नहीं सर कल भर देंगे आपका पैसा। तो आज के गुरुओं का ये हिसाब किताब है। तो आज के जो गुरु हैं वे ज्ञान को बेचते हैं। ज्ञान को बेचा नहीं जाता है, ज्ञान को बांटा जाता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और बेचने से कम होता है। तो पहले के गुरु लोग ज्ञान को बांटते थे और शिष्य अपना कर्तव्य निभाते थे। आपको क्या चाहिए? तो कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि को पूछा, गुरुजी आपको क्या चाहिए? गुरुजी ने कुछ नहीं मांगा, परंतु माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। सांदीपनी मुनि की पत्नी ने कहा, गुरु माँ ने कहा कि कृष्ण यदि आपको देना ही है तो हमारा पुत्र कुछ समय पहले पिकनिक करने के लिए गया था लेकिन वहां से वापस नहीं आया, मर गया, उसे वापस लाकर दे दो। देखिए गुरु दक्षिणा में इतनी बड़ी चीज मांग ली, मरे हुए पुत्र को वापस लाना। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। तुरंत कृष्ण और बलदेव जी गए, बोले कि आपके पुत्र पिकनिक के लिए कहां गए थे? बोले समुद्र किनारे घूमने गए थे लोग। ठीक है कोई बात नहीं, कृष्ण और बलदेव जी गए समुद्र किनारे, समुद्र में पता चला शंखचूड़ नाम का असुर है, नहीं क्षमा कीजिए पंचजन्य नामक असुर है, वहां गए उसके साथ युद्ध किया, मार डाला, परंतु वहां पुत्र नहीं मिला परंतु शंख मिल गया, पंचजन्य शंख लेकर आ गए। समुद्र देवता वरुण देवता को कहा कि समुद्र में है हमारे गुरु, हमारा गुरु का पुत्र नहीं है। तब भगवान ने सोचा कि ये न तो वैकुंठ में है न समुद्र में है, तब ये एक ही जगह पर हो सकता है, वो है यमराज जी के पास। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति की दो गति होती है, तीन गति। गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुण में रहकर सत्वगुणी कार्य करते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वे ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थात वैकुंठ में। रजोगुण में रहकर रजोगुणी कार्य करते हैं, वह इसी लोक में रह जाते हैं 84 लाख के चक्कर में। और तमोगुण में रहकर जो पाप करते हैं वे निम्न लोक में नरक लोक में जाते हैं। तो कृष्ण ने देख लिया न तो ये पृथ्वी में है न वैकुंठ में है, तब ये यमराज जी के पास होगा। तुरंत भगवान श्री कृष्ण भागवत में वर्णन है इस पृथ्वी लोक के बिल्कुल नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, रसातल के नीचे और गर्भोदक सागर के ऊपर दक्षिण की दिशा में नरक लोक है और उस नरक लोक के देवता यमराज हैं और उस नरक लोक के बाजू में यमराज जी की ऑफिस है जिस ऑफिस का नाम है पितृलोक। गरुड़ पुराण में भी वर्णन है। कृष्ण गए वहां पर और यमराज जी के पास, यमराज जी ने स्वागत किया, बोले प्रभु आपका यहां आना। कृष्ण ने कहा मैं कुछ काम से आया हूं, मेरे गुरु का पुत्र यहां पर है? यमराज जी ने कहा हां है। बोले उसे वापस लौटाओ, मैं लेने आया हूं। यमराज जी ने कहा कि आपके गुरु के पुत्र के कर्म में लिखा है मरना, इसलिए उसे मरना तो होगा ही। कृष्ण ने कहा उनके कर्म में जो भी लिखा है मैं उसे लेने आया हूं, मुझे वापस दे दो। श्रीमद् भागवत में साफ साफ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस समय यमराज जी ने कहा कि कृष्ण यद्यपि आपके गुरु के पुत्र के जीवन में मृत्यु लिखी है, उनके कर्म में मृत्यु लिखी है, परंतु आप कह रहे हो इसलिए उसका कर्म बदलने जा रहा है, अब उसे जीवन दान मिलने जा रहा है और ये आपके गुरु का पुत्र है, आप उसे लेकर जाइए। इस संसार में सब लोग कर्म के फल के वश होकर, कर्म के फल के वशीभूत होकर सब लोग दुखी होकर घूम रहे हैं, परंतु उस कर्म को काटने वाले एकमात्र कृष्ण हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति वाजा, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि इस संसार में कर्म को कोई नहीं काट सकता है, कर्म की गति बहुत न्यारी है। कहते हैं चींटी से लेकर इंद्र तक सबको अपने अपने कर्म की सजा भुगतनी पड़ती है, परंतु कर्माणि निर्दहति, परंतु कृष्ण की भक्ति यदि करने लगेंगे तो करोड़ों करोड़ों जन्म के कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। प्रकट आप देख सकते हैं, मर गया था गुरु का पुत्र, परंतु कृष्ण उसका हाथ पकड़कर वापस लेकर आए और गुरु जी को दे दिया। इसे कहते हैं भगवान, जो मरे हुए को भी जीवित कर दे। आज कुछ लोग संसार में अपने आप को भगवान कहते हैं, उसे कहना चाहिए आप भगवान हो तो ये मरे हुए को जीवित कर दो। खुद 2-3 साल में मरने वाला है और अपने आप को भगवान कहते हैं, भगवान भगवान होते हैं। तो यहां पर देवी उत्तरा कहती है, नान्यम त्वद अभयम पशे यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, इस संसार में मरे हुए को जीवित करने वाले मात्र आप ही हो, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। तब भगवान कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं, उत्तरा जी अब आप जीवो या मरो क्या फर्क पड़ता है, आपके पति तो इस दुनिया में रहे नहीं, अभिमन्यु तो थे नहीं, और पति के विरह में पत्नी को मर जाना ही अच्छा है, आप क्यों जीवन दान मांग रहे हो। बात भी सत्य है, इस संसार में पत्नी का वास्तविक सुख पति के चरणों में होता है, पति से दूर होकर पत्नी कभी सुखी नहीं हो सकती। डाइवर्स लेने वाले को सोच लेना चाहिए, कभी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम डाइवर्स ले लेंगे, स्त्रियां सोचती हैं कि ये पति से तो डाइवर्स ले लेंगे सुखी हो जाए, कभी नहीं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये देवी सीता रामायण में इस बात को कहती हैं। जब भगवान ने ना कह दिया तुम हमारे साथ वनवास में मत आओ, तब देवी सीता कहती हैं, जीय बीनु देह नदी बीन वारी, जीय बीनु देह नदी बीन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बीन नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बीन नारी। बहुत सुंदर बात कहती हैं, जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती है, जैसे प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं रहता है, जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं है, जैसे प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं है, वैसे पति के बिना पत्नी कुछ काम की नहीं रहती है, काम की नहीं रहती। इसलिए भगवान कहते हैं कि उत्तराजी आपके पति तो इस संसार में रहे नहीं, अब आपको जीने से क्या लाभ है, आप भी मर जाओ। तब उत्तरा कृष्ण से देखिए आज की नारी के लिए कितना सुंदर उपदेश है। उत्तरा कहती है मैं मरने के लिए तैयार हूं, परंतु अभी द्रवती मामिश मामे गर्भो निपात्यताम, मैं भले मर जाऊं परंतु मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वह नहीं मरना चाहिए। हे कृष्ण आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, मैं मर जाऊं चलेगा, परंतु मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उसे एक खरोज भी ना आए, मैं ऐसी आपको प्रार्थना करती हूं। देखिए कितना सुंदर उपदेश है। आज की नारी काम भोग में प्रभावित होकर पुरुष के साथ संग करती हैं, और जब गर्भ रह जाता है तो डॉक्टर के पास जाकर गर्भपात कराती हैं। और यहां उतरा अपने गर्भ के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मैं मर जाऊं परंतु गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। और आज लोग अपने लिए गर्भपात कराते हैं, और हमारी गवर्नमेंट भी इतनी अंधी हो गई है कि यहां सोलापुर में तो पता नहीं, बॉम्बे में तो सभी जगह पर बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं कि गर्भपात कराना हो 99 रुपीज, 99 रुपये में गर्भपात कराएंगे। कसाई हो गए हैं आज के डॉक्टर, जानते हैं। और डॉक्टर लोग कहते हैं स्त्रियों को डरने की कोई बात नहीं, ये बालक में जो जीव है जीवन 3-4 महीने के बाद आता है, परंतु शास्त्र कहते हैं, कहता है भगवान कपिल देव माता देवहूति से, आप लोग सुनते हैं ना रोज, हम सुबह सुनेंगे, यहां 2 कथा होगी। भगवान कपिल देव माता देवहूति को ये सारी बात बताते हैं, कि कैसे बालक गर्भ में आता है, बड़ा होता है, तो उस उपदेश में कहते हैं जिस दिन गर्भाधान होता है उसी दिन से उस बालक में जीवन आ जाता है। और डॉक्टर लोग उस बालक का वध करते हैं। मैं तो कभी कभी विचार करता हूं हमारा कानून कैसा है, यदि किसी को मार डालोगे तो उसे फांसी की सजा मिलेगी। किसी को आपने मार डाला फांसी की सजा, और गर्भपात करने वाले को पैसे मिलते हैं। आप देखिए कोई व्यक्ति किसी का खून कर रहा है तो जिसका खून हो रहा है वह अपना बचाव कर सकता है, भाग कर चिल्ला कर कैसे भी, परंतु बेचारा गर्भ में रहने वाला बालक अपना बचाव करे तो कैसे करे। तो उस बालक को मारने के लिए कोई सजा नहीं, ऊपर से पैसे मिलते हैं। कहने वाले ने सच सत कहा है कि वास्तव में ये कानून अंधा है, नहीं देख रहा है। और आज की मां स्त्री होकर भी अपने गर्भ का पात करा रही है, बहुत दुर्भाग्य है, यह बहुत बड़ा पाप है। शास्त्र से, भागवत से इस बात को सीखनी चाहिए। तो इस प्रकार देवी उत्तरा कृष्ण से प्रार्थना करिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। और उसी समय उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण गदा और सुदर्शन चक्र को लेकर उत्तरा के गर्भ में चले गए, और बाहर भी खड़े रहे, अंदर और बाहर दोनों ओर से उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई, रक्षा कर। इस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। अब आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के समय परीक्षित महाराज की रक्षा की। ऐसी ही एक दुर्घटना परीक्षित महाराज के जीवन में घटी। कब? एक दिन की बात, महाराज परीक्षित मृगड़ा करने के लिए जंगल में गए थे, और जंगल में गए तो बहुत प्यास लगी, पानी नहीं मिला। समीक ऋषि के आश्रम में आए, समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। ये महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी दुनिया के राजा थे। आज का साधारण नेता उपनेता यदि हमारे घर पर आ जाए तो उसका हम स्वागत करते हैं। समीक ऋषि ने स्वागत नहीं किया क्योंकि ध्यान में बैठे थे, परंतु राजा परीक्षित ने सोचा ये ध्यान कर रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, जैसे आज के लोग करते हैं। कुछ लोग प्रवचन में भी ध्यान शुरू कर देते हैं, सो जाते हैं और बैठते हैं ऐसे जैसे वक्ता को लगे कि नहीं हम लोग सुन रहे हैं। ध्यान का नाटक नहीं होना चाहिए। यहां खंभे बहुत सारे हैं, खंभे को देखकर मुझे कथा याद आ रही है, कह दूं? एक बार एक लड़की हमारे इस्कॉन में भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर भक्त थी, भक्ति करती थी, लेकिन उनके माता पिता भक्ति नहीं करते थे, अक्सर ऐसा होता है। तो एक दिन ये लड़की ने अपने पिता को कहा कि सोलापुर में यहाँ राधा दामोदर मंदिर में कथा हो रही है, आप आइए। तो पिताजी अक्सर ना कहते थे, नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। एक दिन जबरदस्ती वह लड़की अपने पिता को यहाँ लेकर आई कथा में, परंतु वो पिताजी की कोई रुचि नहीं थी कथा सुनने में। तो जिसकी कथा में रुचि नहीं होती है ना, वो लास्ट में बैठते हैं, आपको पता होगा। और जिसकी रुचि होती है वो आगे आकर बैठते हैं। हमें तो अनुभव है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो स्कूल में जैसे शान से क्लासेस में एंट्री करते थे और क्लास में लास्ट बेंचेस के ऊपर बैठते थे। कि पढ़ना किसको है, पढ़ना है वो आगे बैठेंगे, पढ़ना नहीं है पीछे बैठेंगे। और इतना भी होता था कि पीछे बैठकर हम बात करते थे, बातचीत करते थे, तो टीचर कहते थे कि देखो आपको बात करना है तो बाहर चले जाओ। टीचर इसलिए कहते थे कि ये लोग बात बंद कर दे, लेकिन वो कहते थे बात करना है बात, हम लोग खड़े होकर बाहर चले जाते थे। तो ऐसे ही कभी कभी कथा में होता है कि जिसको कथा में रुचि नहीं होती है वो पीछे बैठते हैं, और ऐसे आगे निशाना लेकर बैठते हैं किसी के पीछे, ताकि वक्ता को हमारा मस्तक दिखे नहीं, कभी जबकि आ गई तो चल जाए। तो जिसको कथा में रुचि नहीं है वो पीछे बैठते हैं और खंबे का सहारा लेकर बैठते हैं, खंबे का सहारा लेकर, ताकि सोने में कुछ सहूलियत हो। तो ये प्रभु जी आए और सबसे पीछे बैठे और खंबे का सहारा लेकर बैठ गए और यहां गंगा की धारावत कथा प्रारंभ हुई। और आप सब जानते हो ऐसा पंडाल लगा होता है तो कुत्ते आगे पीछे घूमते हैं कभी कभी। तो कथा मंडप में एक कुत्ता आ गया और कुत्ता टायर और खंबा ढूंढता है। तो कथा मंडप में टायर तो नहीं मिला परंतु खंबा मिल गया। तो ये पिताजी पीछे खंबे का सहारा लेकर सो गए थे। और कुछ लोग सोते हैं ना तो मुंह खुला रखकर सोते हैं। तो ये मुंह खुला रखकर सो रहे थे और कुत्ता वहीं पर, आगे तो कुत्ता आ नहीं सकता है तो पीछे पीछे घूम रहा था। और अब आगे तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। आप जो सोच रहे हैं वही हुआ। और कुछ डेढ़ दो घंटे के बाद कथा समाप्त हुई। और समाप्त हुई तो जो श्रद्धालु श्रोता थे वो तो आनंदित हो गए, वाह आज तो कितनी सुंदर कथा हुई, अमृत बरस रहा था आज तो, अमृत के समान कथा, अमृत। वो भी जग गया सबकी बात सुनकर, वो भी कहने लगा हाँ अमृत अमृत अमृत। लेकिन दो तीन जन को बुलाकर कहा यार अमृत थोड़ा खारा था। बुद्धिमान होना चाहिए। कथा को सुनकर कुछ लोग इस समझ गए होंगे मेरा कहने का इरादा क्या है, खंबे का सहारा। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो मैं ये कह रहा था समीकृषि ध्यान में बैठे थे और परीक्षित महाराज ने सोचा कि ध्यान में बैठे हैं या ध्यान करने का ड्रामा कर रहे हैं। यह परीक्षण करने के लिए महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सांप नीचे पड़ा था, उस मरे हुए सांप को उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया और समीक ऋषि ध्यान में मग्न रहे। परीक्षित महाराज को लगा नहीं वास्तव में ध्यान में बैठे हैं। महाराज परीक्षित तो चले गए परंतु एक बालक ने यह दृश्य देखा और तुरंत वह बालक दौड़ते दौड़ते उस समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी जिसका नाम था नदी में स्नान कर रहा था, उसे कहा कि एक व्यक्ति आपके आश्रम में आया और आपके आश्रम में आकर आपके पिता के गले में सांप डाल दिया। तो श्रृंगी क्या जाने ये मरा हुआ सांप डाला जीवित डाला, श्रृंगी तो क्रोधित हो गया। वह श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में सांप डाला है उस व्यक्ति की 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी और तक्षक नाग आकर उसे डस लेगा। कुछ लोग कहते हैं कभी कभी कुछ कथाकार तथाकथित कथाकार टीवी में बहुत सारे आज तो हो गए, वह कहते हैं कि वास्तव में परीक्षित महाराज ने अपराध किया और कलयुग को सोने में स्थान दिया गोल्ड में और वह कलयुग परीक्षित महाराज के मुकुट में आकर बैठ गया और इसलिए परीक्षित ने अपराध किया और कलयुग परीक्षित के मुकुट में आने के कारण परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। ये बात सरासर गलत है। परीक्षित के मस्तक पर कभी कलयुग आ नहीं सकता क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे। वास्तव में कलयुग का प्रारंभ परीक्षित के मुकुट से नहीं, कलयुग का प्रारंभ ब्राह्मणों के मस्तिष्क से हुआ। कलयुग ने सबसे पहले परीक्षित के दिमाग को नहीं बिगाड़ा, कलयुग ने सबसे पहले ब्राह्मण के दिमाग को बिगाड़ा। आज हम देखते हैं कि भगवान ने ब्राह्मणों को बनाया है ज्ञान देने के लिए। भागवत में वर्णन है 4 वर्ण की उत्पत्ति, ब्राह्मण का जन्म भगवान के मुख से हुआ, क्षत्रियो का भुजा से, वैश्य का जंगा से और शूद्र का चरणों से। और ब्राह्मणों का कार्य पठन पाठन यजन याजन इत्यादि, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य है ज्ञान लेना और दूसरों को ज्ञान देना। परंतु आज के ब्राह्मण स्वयं व्यसन करते हैं, चाय कॉफी तंबाकू खाते हैं, अब क्या दूसरों को ज्ञान देंगे। कलयुग का प्रारंभ यहां से हुआ, श्रृंगी ने श्राप दिया और तुरंत आकर देखा तो पिताजी तो जीवित थे, पता चला ये तो मरा हुआ सांप है। तुरंत श्रृंगी रोने लगा, पिताजी आज मेरे से भूल हो गई। बोले क्या भूल हुई? पिताजी मैंने एक व्यक्ति को श्राप दे दिया, 7 दिन में तक्षक नाग उसे मार डालेगा। समय कृष्ण ने ध्यान में देखा तो पता चला इसने परीक्षित को श्राप दिया है, बहुत अफसोस किया है। समीक ऋषि ने कि बेटा तूने जिसको श्राप दिया वो धर्मात्मा था, तूने परीक्षित को श्राप दिया। यदि परीक्षित चाहता, यदि परीक्षित महाराज चाहते तो कलयुग इस संसार में आ नहीं सकता था, समर्थ थे। सतयुग त्रेतायुग द्वापर, और द्वापर के बाद हम जब कलयुग में बैठे हैं ना, परीक्षित चाहते तो आज हम सतयुग में होते, इतने प्रतापी राजा थे। परंतु बेटा तूने उस परीक्षित को श्राप दे दिया है, बहुत अनर्थ हो गया है, अब संसार में हाहाकार मच जाएगा, लूट होगी, चोरी होगी, कलह होगा, क्लेश होगा। भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पुत्र से बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप इसे क्षमा कीजिएगा। क्योंकि पुत्र की भूल पुत्र की नहीं पिता की मानी जाती है, हैं? शिष्य की भूल शिष्य की नहीं गुरु की मानी जाती है, नौकर की भृत्य की भूल भृत्य की नहीं मालिक की मानी जाती है। इसलिए एक लीडर को, एक गुरु को और एक पिता को ध्यान रखना चाहिए कि अपने पुत्र से कोई गलत काम ना हो, नहीं तो पुत्र की भूल पिता की भूल मानी जाती है। इसलिए प्रार्थना करते हैं क्षमा कीजिएगा। और तुरंत समीक ऋषि ने एक व्यक्ति को भेजा, या कुछ लोग कहते हैं वे स्वयं गए और जाकर परीक्षित को बताए, परीक्षित जी क्षमा कीजिएगा, 7 दिन के बाद आपको आपकी मृत्यु है, 7 दिन के बाद आपको मरना है। देखिए परीक्षित महाराज मरने की बात सुने तुरंत प्रसन्न हुए, और उन्होंने यह नहीं सोचा कि अब कैसे भी करके मृत्यु को टाल दूं। चाहते तो वे तक्षक को टाल सकते थे, परंतु परीक्षित ने मृत्यु को टालने की कोई कोशिश नहीं की, परीक्षित ने मृत्यु को संवारने का प्रयास किया। यह भक्तों का स्वभाव होता है, भक्त लोग मृत्यु को टालना नहीं चाहते हैं, भक्त लोग मृत्यु को संवारना चाहते हैं, और असुर लोग मृत्यु को टालना चाहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम प्रतिद्वंद एक राजम व्यतिसत सते पे मंदर द्रोणम तप परम दारुणम ऊर्ध्व बाहु नभोर दुष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। अजर अमर होने के लिए हिरण्यकश्यपु तपस्या किया, कैसी तपस्या? ऊर्ध्व बाहु अपनी भुजा ऊपर करके, नभो दृष्टि अपनी दृष्टि नभ की ओर करके, पादांगुष्ठा श्रितावनी मात्र अपने अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर, बिना खाए बिना पिए बिना भोजन किए, एक दो दिन के लिए नहीं, यहां तो साल में एक दिन पांडव एकादशी रहनी है फिर भी नानी मर जाती है, उसमें भी आ, आ, और उसमें पूरा दिन क्या सोचते बताएं, कल सुबह पानी पूरी खाऊंगी, मालपोवा खाऊंगी, ये खाऊंगा वो खाऊंगा। परंतु हिरण्यकश्यपु कितनी बड़ी तपस्या, एक दिन नहीं 36,500 वर्ष तक बिना खाए पिए अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर। क्यों? क्योंकि अमर बनना चाहता था। हिरण्यकश्यपु राजन अजेय अजर अमरम, ये जो असुर होते हैं वे अमर बनना चाहते हैं, और कंस भी, आप सब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी ने यह कथा सुनाई होगी गत वर्ष, कंस देवकी की सेवा कर रहा था, आकाशवाणी हुई 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी, तुरंत कंस देवकी को मारना चाहा, अपनी मृत्यु को टालना चाहा। असुर लोग अपनी मृत्यु को टालते हैं, परंतु भक्तगण अपनी मृत्यु को टालते नहीं, मृत्यु को सवारते हैं। और अपनी मृत्यु को कैसे सवारनी चाहिए ये भागवत सिखाता है। इस संसार में आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत होते हैं ना, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग सीखकर कहां जाओगे, क्या करोगे? कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं जीवन जीने की कला, क्योंकि वह भ्रम में है कि हम जी रहे हैं। विचार करो बुद्धि से, हम लोग जी नहीं रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं। विचार कीजिए, हम लोग जीना किसे कहते हैं? जीना उसे कहते हैं जो जीवन की ओर आगे बढ़े। जीवन की ओर आगे बढ़े मतलब जो रोज उनके जीवन में दिन बढ़ते जाए, परंतु हमारे जीवन में तो दिन कम होते जा रहे हैं। प्रति साल, प्रति महीने, प्रति सप्ताह, प्रति घंटे, प्रति मिनट और प्रति सेकंड हम लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ यह सीखना चाहिए। और यदि यह सीखना है तो रोज सुबह राधा दामोदर मंदिर में आइए और भागवत क्लास में सिखाया जाता है कि किस प्रकार आर्ट ऑफ सक्सेसफुल डेथ, किस प्रकार आप अपने मृत्यु को सवार सकते हो, भागवत सिखाता है। मरना सीखना है। तो परीक्षित महाराज अपने मृत्यु को टालना नहीं चाहे, संवारना चाहे। और परीक्षित महाराज, देखिए परीक्षित महाराज के जीवन में पहली दुर्घटना आई तो परीक्षित महाराज कृष्ण के शरण में गए। आपने कथा सुनी ना, कृष्ण रथ के ऊपर बैठे थे, उतरा गई, प्रार्थना की, प्रणाम की। और अब परीक्षित महाराज कृष्ण की शरण में नहीं जा रहे हैं, अब परीक्षित महाराज भागवत की शरण में गए। अब मूल बात पर आप आइए जहां से हमने प्रारंभ किया था। परीक्षित महाराज कृष्ण की शरण में नहीं, वे तुरंत घर बार सब कुछ छोड़कर हरिद्वार में गंगा के तट पर गए और गंगा के तट पर जाकर गायत्री विष्णु गाथा, वे क्या करना चाहते थे? विष्णु की गाथा, कृष्ण कथा, वे भागवत सुनना चाहते थे। और परीक्षित महाराज के मन में भागवत सुनने की इच्छा हुई। भक्तों, जिसके हृदय में शुद्ध जिज्ञासा होती है ना, भगवान की उन पर शुद्ध कृपा होती है। जिसके हृदय में इच्छा है कि मुझे शुद्ध गुरु मिले, मुझे भागवत सुनाने वाले शुद्ध गुरु वक्ता इत्यादि मिले, तो भगवान की कृपा से ऐसे गुरु मिल जाते हैं। परंतु जिसके हृदय में जिज्ञासा भी मिलावट वाली होती है ना, उसे मिलावट वाले गुरु मिलते हैं। कुछ लोग चाहते हमें ऐसे गुरु मिले जो चाय कॉफी पीने के लिए ना न कहे, हमको सब कुछ करने के लिए कह दे, सब कुछ छूट दे दे। कुछ लोग चाहते हैं ऐसे गुरु मिल जाए, फ्लेक्सिबल गुरु, ऐसे गुरु मिल जाए, तो भगवान उसे ऐसे गुरु देते हैं। आते हैं गुरु, जो खाना है पीना है खाते रहो, पीते रहो, करते रहो, लेकिन दक्षिणा भूले बिना देकर जाना, हम तुम्हारा सब कुछ संभाल लेंगे। कहते हैं कि बस आप मेरा ध्यान करो, मेरा मंत्र जपो, वैकुंठ मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, सोलापुर में है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम तो पूरे भारत में कथा करते रहते हैं, बहुत भरे पड़े हैं। लेकिन कभी कभी गुरु को भी नड़ने वाले मिल जाते हैं। एक बार दिल्ली में एक ऐसे गुरु थे, अपने शिष्य को कहा कि देखो बेटा आप मेरा ध्यान करो, अब गुरु जी गांजा पीते हैं, ध्यान भी क्या करें, गांजा पी रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, ऐसा ध्यान करें या खेनी खा रहे हैं, ऐसा ध्यान करें? देखो आप मेरा ध्यान करो, मेरा मंत्र जपो, आपको वैकुंठ मिल जाएगा। तब वो जो श्रोत, वो जो चेला था ना, वो भी हमारे महाराष्ट्र का भक्त था, कम नहीं था, बोले वाह गुरुजी वाह, आज तो खुश हो गया गुरुजी, मैं आप पर खुश हो गया और मैं खुश होकर पूरा महाराष्ट्र आपको दान में देकर जा रहा हूं। गुरुजी ने कहा ए मूर्ख, ये महाराष्ट्र दान में देने बैठा है, क्या तेरे बाप का है महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र दान में देने चला? तब चेला भी इतना बुद्धिमान था, गुरुजी तो क्या वैकुंठ आपके बाप का है कि आप मुझे देने बैठे हो? अरे वैकुंठ प्राप्त करने के लिए तो वैकुंठ पति भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे।
तो इस प्रकार मैं ये कह रहा हूं, जिसके हृदय में शुद्ध जिज्ञासा होती है ना, उसे शुद्ध गुरु भगवान की कृपा से मिलते, भगवान भेज देते हैं। परीक्षित महाराज को भी बहुत सारे आय राम गय राम गुरु मिले। कुछ लोगों ने कहा तपस्या करो, दान करो, ध्यान करो, ये करो वो करो। परीक्षित ने कहा नहीं, मुझे कृष्ण कथा सुननी है। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से परम विरक्त चूड़ामणि, प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय महाभागवत सुखदेव गोस्वामी वहां पर उपस्थित हुए। और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ने उनका स्वागत किया, व्यास आसन पर विराजमान हुए। और परीक्षित ने पूछा प्रभु 7 दिन में मुझे मरना है, क्या करना चाहिए? परीक्षित चिंतित थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है परीक्षित, बस मैं बोल रहा हूं तुम सुनो, मेरे मुख से भगवत कथा सुनो, सुनते सुनते भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। और परीक्षित भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए ये 7 दिन भी बहुत ज्यादा है, 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। खटवांगो नाम राजर्षि इतिहास सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी कि हमारे इतिहास में खटवांग नाम के एक राजा हुए और इतने पराक्रमी राजा थे कि देवताओं को जब असुरों के साथ युद्ध करना होता था तो अपनी मदद करने के लिए खटवांग राजा को बुलाते थे पृथ्वी से। एक बार गए, देवताओं को युद्ध में सहायता किए, असुरों के ऊपर विजय प्राप्त किए। और विजय प्राप्त करने के बाद इंद्र ने खटवांग राजा को कहा कि प्रभु आप यहां पर आए, हम बहुत प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए? खटवांग राजा ने कहा मुझे वैकुंठ दे सकता है तो दे दे। इंद्र ने कहा बाकी सब कुछ दे सकता हूं, ये वैकुंठ नहीं मिल सकता है। देखिए स्वर्ग में देवताओं के पास सब कुछ है परंतु भक्ति और भगवान का धाम नहीं, क्योंकि स्वर्ग में इतने विशाल मात्रा में भोग है, अब उस भोग में भक्ति याद थोड़ी ना आती। भक्ति तो वही कर सकता है जो दुखी है ना। स्वर्ग में तो तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, वह स्वर्ग लोग इतना विशाल है, वहां पर इतना सुख भोग है, भगवान कभी याद नहीं आते। भगवान तो उसे ही याद आते हैं जिसके जीवन में दरिद्रता है। भागवत में 2 लोगों ने, एक तो महारानी कुंती और एक नारद जी, दोनों ने कहा है। महारानी कुंती कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवी एद मान मनह पुमान नैवा हतम धातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। हे प्रभु इस संसार में जो धनी है, जिसके पास पद पोस्ट है, वे तो अभिमान में रहते हैं, वे लोग आपकी भक्ति नहीं कर सकते। और नारद जी भी वहां पर कुबेर जी के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप देते हुए कहते हैं कि आप लोग धन और पद के अभिमान में शिव जी का अपराध किया है, इससे तो अच्छा संसार के दरिद्र लोग हैं। नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही है, जिसके ऊपर बहुत कृपा होती है ना तो भगवान उसे दरिद्र बनाते हैं। हम जैसे गरीब बनना भी, धन कम होना, दरिद्रता होना, धन कम होना, ये भगवान की कृपा है। क्यों? नारद जी ने भागवत में कहा है कि जो दरिद्र होते हैं, जिसके पास धन नहीं होता है, वे रात दिन कमाते हैं, पैसा एकत्रित करते हैं, उसके पास पाप करने का समय कहां है? और जिसके पास धन है, धन के ढेर हैं, वो तो रच रच कर पाप करते हैं, मारना काटना जीव हिंसा ये करना शराब पीना। अब बेचारे दरिद्र के पास शराब पीने का समय कहां है? तो रात दिन काम कर रहा है। तो इस प्रकार से जिसके पास, मैं ये कह रहा था स्वर्ग में इतने भोग हैं कि भगवान याद नहीं आते। इंद्र ने कहा खटवांग जी हमारे पास ये वैकुंठ हम नहीं दे सकते, और कुछ भी मांगो। इंद्र ने कहा ठीक है तो एक काम करो, ये बताओ अब मेरे जीवन में कितने साल बाकी रहे हैं, अब कितना साल का जीवन बचा है मेरा? इंद्र ने कहा ये कर सकता। इंद्र ने देख लिया और इंद्र को पसीना निकलने लगा। खटवांग जी ने कहा ये पसीना क्यों निकल रहा है, बताओ जल्दी कितना जीने वाला हूं। इंद्र ने कहा आप दो घड़ी मात्र जियोगे, आपके जीवन में दो घड़ी बची। खटवांग ने कहा एक घड़ी में पृथ्वी पर भेज सकते हो, बोले हाँ। तुरंत इंद्र ने एक घड़ी में खटवांग राजा को पृथ्वी पर भेजा और अंतिम घड़ी में उस हरिद्वार में गंगा के तट पर भगवान का स्मरण किया, मृत्यु हुई और डायरेक्ट भगवान के धाम में चले गए। परीक्षित, दो घड़ी में खटवांग राजा यदि भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन में सात दिन है। तुम कथा सुनो, भगवान की प्राप्ति, भगवान के पार्षद लेने के लिए आएंगे, सर्टिफिकेट मैं देता हूं। श्री प्रभुपाद जी ने सर्टिफिकेट दिया है हम सबको, चार नियम का पालन करो, सोलह माला करो, आपको लेने के लिए मैं आऊंगा। देखिए हम लोग ऐरी गैरी संस्था में नहीं है, हम लोग ऐसी संस्था में है जो सर्टिफाइड है, बिल्कुल सर्टिफिकेट। आप यहां आते हो तो प्रभुपाद जी का सर्टिफिकेट है और प्रभुपाद जी भक्तों को लेने के लिए आते भी हैं। अब वो कथा में चला जाऊंगा तो फिर समय ही निकल जाएगा। कई ऐसे भक्त हैं जो मरते समय प्रभुपाद आप आ गए इतना कह के प्राण छुट गया। इसका अर्थ ये साबित हुआ कि प्रभुपाद जी उसे लेने के लिए आए। प्रभुपाद जी की यह विशेष कृपा है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा भागवत सुनो, सात दिन लगातार परीक्षित महाराज ने भागवत सुनी और वह तक्षक नाग आए। उनके पहले तो भगवान के चार पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि और सुंदर विमान लेकर आए और परीक्षित को विमान में बिठाकर पार्षद बनाकर वैकुंठ लेकर चले गए। और ये तक्षक आया और डसा, लेकिन परीक्षित के मृत देह को डसा, परीक्षित तो चले गए। ये सारी कथा मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि मैंने कथा के प्रारंभ में एक सिद्धांत कहा था कि भगवान बड़े हैं या भागवत बड़ा है। मान लो मन में प्रश्न हो कि वैसे भगवान भागवत में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी यदि हम कंपैरिजन करें तो भगवान श्रेष्ठ या भागवत। परीक्षित महाराज के जीवन में दो दुर्घटना और दोनों मारने वाली दुर्घटना, एक ब्रह्मास्त्र मारने वाला था और ये श्रृंगी का श्राप मारने वाला, और एक दुर्घटना में परीक्षित महाराज कृष्ण की शरण में गए और एक दुर्घटना में भागवत की शरण में गए। अब विचार कीजिए भक्तों, परीक्षित महाराज कृष्ण की शरण में गए तो संसार में आना पड़ा है, ये संसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसना पड़ा। कृष्ण की कृपा से परीक्षित को यह संसार मिला और भागवत की कृपा से परीक्षित को वैकुंठ मिला। बताइए कृष्ण की कृपा बड़ी है या भागवत की? साबित हुआ, प्रमाणित हुआ, भगवान से भी बड़ा यह भागवत है, क्योंकि भगवान ने तो परीक्षित को यह संसार दिया और भागवत ने परीक्षित को वैकुंठ दे दिया। वैकुंठ देने वाला यह भागवत है। और भागवत के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनि सुध गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं और 6 प्रश्न में अंतिम प्रश्न यह था कि कृष्ण के चले जाने के बाद धर्मम क शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म भागवत की शरण में गया। ये भागवत वेदांत सूत्र का भाष्य है, धार्मिक ग्रंथ है जिसमें धर्म का वर्णन हुआ है। और ये भागवत एक दिव्य ग्रंथ जिसकी रचना श्री वेद व्यास जी ने की है। और वेद व्यास जी इस भागवत को लिखने से पहले ही, भागवत के प्रारंभ में ही इस भागवत का श्रुति फल बता रहे हैं कि इस भागवत को सुनने से भगवान की प्राप्ति होगी। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। भागवत सुनने से भगवान की प्राप्ति होगी ये तो बहुत दूर की बात है। यदि भागवत सुनने की आप इच्छा कर लो, भागवत सुना नहीं है, कोई अपने घर पे बैठकर सुनता है, इच्छा करता है कि चलो कल जाकर मैं भागवत सुनूंगा। राधा दामोदर मंदिर में इष्ट देव प्रभु ने आयोजन किया है तो कल जाकर मैं भागवत सुनूंगा या सुनूंगी, सुना नहीं है, लेकिन भागवत सुनने की इच्छा यदि कर लेते हो, वेद व्यास जी कहते हैं सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुश्रुष भी तत्क्षणात्, इच्छा करने मात्र से भगवान उसके हृदय में आकर बंद हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। सुना नहीं है, सुनने की इच्छा करने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, और देरी से नहीं, सद्य तुरंत। सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुश्रुष भी तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान हृदय में आ जाते हैं जिस क्षण हम भागवत सुनने की इच्छा करते हैं, भगवान उसके हृदय में, और वह भक्त को भगवान अपने हृदय में रख लेते हैं। भगवान भक्त को हृदय में रखते हैं। मैते तेषु चाप्यहम्, भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो लोग मेरा भजन करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, मैं उस भक्त के हृदय में रहता हूं। मैते और तेषु, और वे मेरे हृदय में रहते हैं, और भगवान अपने भक्त को अपने हृदय में ऐसे संभाल कर रखते हैं, है ना। जो प्यारी वस्तु होती है उसे हम कहां रखते हैं, हृदय में संभाल कर रखते हैं। जैसे वसुदेव जी कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेकर जा रहे थे, तो अब रामानंद सागर और सब बताते हैं कृष्ण को टोकरी में उठाया, है ना। परंतु विचार कीजिए, जो प्राण से भी प्रिय वस्तु है क्या उसे कोई टोकरी में रखता है, उसे तो हृदय में लगाकर रखते हैं ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो पोस्टर बनाया है आप उसमें देख सकते हो, कृष्ण को हृदय पे लगाकर लेकर जा रहे हैं। जो प्रिय वस्तु होती है उसे हृदय पर लगाते हैं, भगवान अपने हृदय में रखते हैं उस भक्त को। और कैसे रखते हैं, वह अपने भक्त को रखते हैं जैसे लोभी हृदय बस ही धन जैसे, असत मम जन्म उर्बस कैसे। पूछा कि भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, कैसे संभाल कर रखते हैं, तो कैसे कहते हैं लोभी हृदय बस ही धन जैसे। जैसे लोभी ही अपने धन को संभाल कर रखता है, आपने देखा होगा, हम डायमंड का बिजनेस कर चुके हैं, हम जानते हैं कि डायमंड का बिजनेस हो जाने के बाद शाम को जब घर पे जाते हैं तो वो डायमंड और पैसे सब कुछ लॉकर में बंद करके जाते हैं, तिजोरी में बंद करते हैं, और जब तिजोरी को बंद करना होता है तो आधा घंटे तक देखते हैं चाबी ठीक से लग गई, खुला तो नहीं है, ऐसे खींचते हैं, टंग जाते हैं आधा आधा घंटे तक। और मेरी बात बताऊं, मैं तो कभी कभी खुला छोड़कर आ जाता था, इसलिए छोड़ दिया बिजनेस, ये सत्य अपनी बात बता रहा हूं। कभी कभी ये तो अच्छा हुआ पिताजी को पता नहीं होता था, मैंने क्योंकि वहां पर पिताजी का नाम और नंबर ही निकाल दिया वो सेफ से लॉकर से, क्योंकि मैं 24 घंटा कथा सुनते रहता था कान में आईपॉड से, और कथा सुनते सुनते मन कथा में ही रहता था, और कभी करोड़ों के डायमंड रखकर फिर लॉकर बंद करता था, और कभी चाबी उधर भूल गया और उसका फोन आया तुरंत मुझे जाना पड़ता था, और कभी कभी डायमंड जेब में भूलकर घर पर चला गया। अब पिताजी को तब पता चलेगा जब ये कथा की सीढ़ी सुनेंगे, आज तक पता नहीं है उनको। लेकिन फिर मैंने ही सोचा कि अब ऐसी स्थिति हो गई है, अब अभी थोड़ा भी यदि डायमंड के बिजनेस में रहा तो ये गड़बड़ हो जाएगी करोड़ों रुपये की। सोचा भगवान की कृपा है, जीवन भर हम भोजन करके भजन करके जीवन बीत जाए, उनकी उतनी भगवान की कृपा है, तो छोड़ो और भजन भक्ति में मन लगाए। परंतु जो लोभी होते हैं ना, वो अपने धन को बहुत संभाल। एक प्रकाश नाम के व्यक्ति थे, पौने घंटे में देखता था 45 मिनट तक वो लोकर को खींचते रहते थे, खुला तो नहीं छोड़ गए। तो जैसे लोभी व्यक्ति अपने धन को संभाल कर रखता है, वैसे भगवान अपने भक्तों को संभाल कर रखते हैं, थोड़ी भी आंच नहीं आने देते हैं, भक्तों को थोड़ा भी कष्ट नहीं होने देते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। इतिहास खोल कर देख लीजिए, भगवान ने रक्षा की प्रहलाद की, भगवान ने रक्षा की ध्रुव की, भगवान ने रक्षा की मीराबाई की, भगवान ने रक्षा की अर्जुन की, भगवान ने रक्षा की पांडवों की, एक से एक भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं। तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे, परंतु हमें क्या करना है, उस भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति का अर्थ होता है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये भक्ति हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि सुनने के बाद हम घर पर जाएंगे फिर भक्ति शुरू करेंगे, नहीं, भागवत सुनना ही एक भक्ति है, श्रवणम जिसे, और सबसे प्रथम भक्ति तो ये है श्रवण भक्ति। और श्रवण में भी भागवत श्रवण, और भागवत में भी कृष्ण कथा का श्रवण, ये तो सबसे उत्तम। आप सब भक्तों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो हम कथा करते ही रहते हैं, परंतु भागवत के अन्य स्कंद अन्य अध्यायों की कथा होती है, परंतु यहाँ पर आप सब भक्तों की इच्छा, इष्ट देव प्रभु की इच्छा, और लोकनाथ महाराज हरिद्वार में आए थे और उन्होंने स्पेशल हमको आज्ञा दी थी कि आप सोलापुर में आइएगा, तो उनकी कृपा से यहाँ पर हम कृष्ण की विशुद्ध लीला की कथा सुनेंगे। कृष्ण लीला, कृष्ण कथा जो भागवत के दसम स्कंद में है। वैसे भागवत में 10 विषय हैं, गीता में 5 विषय है ना, गीता के 5 विषय ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। वैसे भागवत में 10 विषय हैं, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय मन्वन्तरेषानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। उसमें से 10वां तत्व, अंतिम तत्व जो है वह आश्रय तत्व, और वास्तव में ये आश्रय तत्व ही पूरे भागवत का सार है। कृष्ण कथा ही भागवत का सार है। जैसे भागवत को यदि आप दूध के साथ उपमा करते हो, तो कृष्ण कथा जो है ये उनका मक्खन है, घी है। कृष्ण कथा सुनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दसम स्कंद नहीं सुनना चाहिए, हम नहीं समझ पाए, परंतु भक्तों कब तक आप कृष्ण कथा नहीं सुनोगे? कुछ लोग कहते हैं दसम स्कंद नहीं सुनना चाहिए, ये बहुत परमहंस की लीला है। हम मानते हैं कि दसम स्कंद कृष्ण की विशुद्ध लीला, परमहंसों की कथा है, परंतु यदि कृष्ण के बारे में नहीं सुनोगे तो कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे होगा? कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए कृष्ण के बारे में जानना होगा ना। हम तो रोज सुबह मंगला आरती में कहते हैं, मंगला आरती के बाद, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जो कि है कृष्ण प्रेम है। अब चाहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो वो प्रेम कैसे मिलेगा जिस व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं है? तो कम से कम उसके बारे में सुनना होगा ना। जैसे भागवत में रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र लिखा, कृष्ण मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और तुम्हारे बिना एक सेकंड भी जी नहीं सकती हूं, और कल शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होने जा रहा है, यदि आप मुझे यहां से लेकर नहीं गए मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। पत्र में यह भी लिखा, कृष्ण आप जानते होंगे कि न तो मैंने आपको कभी देखा है, न फोन में बातचीत की, न कुछ हुआ, फिर भी इतना क्यों मर रही हूं आपके ऊपर, इतना प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? आपको प्रश्न होता होगा, हमें भी प्रश्न होता है ना, कि रुक्मणी ने कृष्ण को न तो कभी देखा, न कभी फोटो देखा, न कभी सुना, न कभी फोन में बात किया, तो फिर रुक्मणी का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों कि कृष्ण के बिगर वो रह नहीं सकती है? तब रुक्मणी वो पत्र में ही लिखती है, श्रुत्वा भुवन भुवन सुंदर, कृष्ण मैंने आपको कभी देखा नहीं है, परंतु आपके बारे में सुना अवश्य है। नारद मुनि, असित ऋषि, देवल ऋषि, वेद व्यास, ये सब संतों के मुख से आपकी कथा सुनी है, और हे कृष्ण आपकी कथा सुन सुनकर, आपकी कथा सुन सुनकर आपके प्रति इतना प्रेम हो गया है कि अब आपके बिना रहा नहीं जा सकता है। भक्तों ऐसी स्थिति, नयनम गलद अश्रुधारया, चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है ना कि प्रेम के चरम सरम सीमा पर हम कब पहुंचेंगे, जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहां पर कृष्ण कथा होगी, कृष्ण की विशुद्ध लीला। और मैंने सुना कि यहां पर गोकुल लीला, वृंदावन की लीला प्राय हो चुकी है, तो कृष्ण लीला का यह क्रम है, कृष्ण जन्म लीला, जन्म के बाद गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, और उसके बाद मथुरा लीला, और यहाँ के भक्त मथुरा लीला सुनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम सब कल से मथुरा लीला प्रारंभ करेंगे। ये मथुरा लीला मथुरा के विषय में भागवत में आया है, राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्नी हितो हरि। ये मथुरा कोई साधारण देश नहीं है, देश भी बहुत उत्तम है और लीला भी बहुत उत्तम। उस मथुरा के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजधानी तत साभूत। उस समय आज से 5000 वर्ष पहले ये मथुरा जो थी न केवल भारत, पूरी दुनिया की राजधानी थी। आज हम दिल्ली को भारत की राजधानी मानते ना, उस समय मथुरा पूरी दुनिया की राजधानी थी। और पूरे दुनिया का जो कारोबार था वो मथुरा से होता था। जैसे आज हम अमेरिका को मानते हैं कि बहुत बड़ा देश है और वहां पर सुख भोग और सब फैसिलिटी है, उस समय मथुरा में यह फैसिलिटी होती थी। और इसीलिए सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी मथुरा में रहते थे और राजा देवक की पुत्री देवकी ही मथुरा में रहती थी। ये दोनों मथुरा के निवासी मथुरा में विवाह किए। कभी देखा है एक गांव में रहने वाले आपस में विवाह करें? आज भी हमारे गांव में ये प्रथा है कि एक ही गांव में एक ही सरनेम वालों के बीच में विवाह नहीं होता। परंतु देवकी और वसुदेव दोनों मथुरा में रहने वाले मथुरा में विवाह किया। क्यों? क्योंकि मथुरा नगरी बहुत समृद्ध नगरी थी और सर्व यादव भूभुजाम, सर्व यादवों की यह राजधानी थी। और ये तो छोड़िए, मथुरा की विशेषता क्या है, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भगवान नित्य विराजते हैं, आज भी भगवान यहां रहते हैं। तो ऐसी मथुरा लीला का वर्णन हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज प्रथम दिन है, केवल इंट्रोडक्शन मात्र हुआ, कल से हम कथा को गति प्रदान करेंगे। तो आप सब भक्तों को निवेदन है, आप इस कथा में आइए और